लगभग 30 मिनट तक माहौल मुश्किलों से भरा रहा। 30 मिनट बाद एक जेट हेलीकॉप्टर संस्थान की छत पर लैंड किया और एमा उससे निकलकर बाहर आई। उसके पीछे निक निकलकर बाहर आया, जो पूरी तरह से स्वस्थ था। उसे हल्की फुल्की चोट भी आई थी। बाहर आते ही वो वापस जेट की ओर मुड़ा और जैन को गोद में उठा लिया। इतने में मेडिकल टीम वहां आ गई। जेट में और भी कई सारे घायल लोग थे। सभी घायलों को मेडिकल टीम संस्थान के अस्पताल में ले जाने लगी। एक 16 साल के करीब का लड़का जो प्रियांक था, वो भी उनमें था। कैप्टन निक ने जैन को एक स्ट्रेचर पर लिटाया और फिर तुरंत डॉक्टरों को निर्देश देते हुए कहा, क्विक क्विक प्लीज डॉक्टर, जल्दी आइए, इसकी हालत गंभीर है, जल्दी इसे इमरजेंसी रूम में ले जाया जाए। डॉक्टर आए और निक ने तुरंत एमा को जैन के साथ जाने के लिए कहा। फिर वो बाकी लोगों की ओर हो गया। काफी सारे लोग थे, काफी गंभीर माहौल बना हुआ था। उसने सभी को एक साथ संभालते हुए कहा, प्लीज यहां पर भीड़ मत कीजिए, जो भी पेशेंट हैं और जिन्हें ज्यादा चोट लगी है, वे एक बार के लिए पहले आगे आएं। एवरीथिंग इज ऑल राइट एंड अंडर कंट्रोल, हम सब अब खतरे से बाहर आ चुके हैं। ये कहकर उसने अपने आंसू संभाले, क्योंकि जैन की हालत ठीक नहीं थी। फिर वो नीचे इमरजेंसी रूम की ओर चला गया। वहां वो तब तक जैन को देखकर अपने आंसुओं को बहाता रहा जब तक डॉक्टर ने बाहर आकर नहीं कहा, वो ठीक है, किसी तरह का कोई खतरा नहीं, काफी सारी चोट और जख्म है जिसकी वजह से ब्लड लॉस हुआ है, मगर हम ब्लड चढ़ाकर इस कंडीशन को फेस आउट कर लेंगे। ये सुनकर निक की जान में जान आई और उसने फिर रोना बंद किया। एमा वहीं थी और निक को तब से देख रही थी जब से वो वहां आया था। निक ने अपने चेहरे पर दिखावटी मुस्कान दिखाई। उसका चेहरा रोने की वजह से मुरझाया हुआ था, जिस कारण उसका हंसना नकलीपन का ही एहसास दे रहा था। मेरा भाई ठीक है, निक ने कहा और फिर दौड़कर एमा के गले लग गया। तभी जिनी दौड़ते हुए वहां आई और अपने चेहरे पर हैरान परेशान होने वाले भाव दिखाए। वहीं पास लगे टेलीविजन में निक के मरने और दूसरे कई सारे लोगों के मरने की खबरों का टेलीकास्ट हो रहा था। निक ने पहले खबरों की तरफ देखा और फिर जिनी की तरफ। फिर उसने उससे पूछा, ऐसे क्या देख रही हो, जिंदा हूं मैं भी, भूत नहीं हूं मैं, इतना भी भरोसा नहीं था मुझ पर, पहली बार तो मैंने ऐसा ऑपरेशन हैंडल किया नहीं, और ये न्यूज वाले, इनकी तो ये कभी कोई खबर सही से भी दिखाएंगे क्या, मैंने वहां एक भी आदमी को नहीं मरने दिया और ये, इन्होंने तो मुझे भी मार दिया। ये कहकर निक ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई। जिनी उसके पास आई और उसके गले लग गई। तुम नहीं जानते हम तुम्हारी कितनी फिक्र हो गई थी। जैन कैसा है, उसने पूछा। वो ठीक है, निक ने जवाब दिया। निक अभी भी हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। जिनी अलग हुई और उसके कंधे पर मुक्का मारकर बोली, ज्यादा दांत मत दिखा, मुझे सब पता था तू हैंडल कर लेगा, ऐसी फेक न्यूज आती रहती है, अब हंस हंस कर हमारा मजाक मत बनाओ, और हाँ, यहां हालत किसी और की भी खराब हो रही है, इधर आ तू पहले। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे प्रियांक के कमरे की ओर ले गई, वहां जहां उसका इलाज चल रहा था। वे लोग वहां पहुंचे तो उन्हें प्रियांक दिखाई दी, जो पूरी तरह से शोक में थी और अपने घुटनों को समेटकर अपना मुंह उसके ऊपर रखकर बैठी हुई थी। बेहोश होने के बाद डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयां दे दी थी जिससे वो होश में आ गई थी, मगर होश में आने के बावजूद वो सामान्य नहीं हुई थी और तब से ऐसे ही बैठी थी। आसपास के लोग उसे बुलाने की कोशिश भी कर रहे थे, मगर वो उनका भी जवाब नहीं दे रही थी। प्रियांक, निक उसे देखते ही बोला। प्रियांक के कानों में ये आवाज गूंजी तो उसने अपना चेहरा उठाया और दरवाजे की तरफ देखा। निक को अपने सामने देखते ही वो उठी और उसकी ओर दौड़ पड़ी। निक के पास पहुंचते ही उसने उसे कसकर गले से लगा लिया। आसपास खड़े सब लोग ये देखते ही रह गए। निक ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, मैं ठीक हूं मिस शर्मा, मुझे कुछ नहीं हुआ। पर न्यूज में, प्रियांक बोली, न्यूज को अभी तक हमारी ओर से कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, ये लोग वही दिखा रहे हैं जो इन्हें दिख रहा है या फिर लग रहा है। जिनी वहीं दरवाजे के पास खड़ी थी, उसने हैरानी से पूछा, पर तुम बच के कैसे आए, तुमने इतने सारे लोगों की भी जान बचाई, कैसे, और तुम बिल्डिंग में भी गए थे, ये न्यूज कन्फर्म है, अगर तुम बिल्डिंग में नहीं गए होते तो जैन बिल्डिंग की तरफ देखकर चिल्लाता ना। मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा, मगर अभी नहीं, बाद में, पहले तुम ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आउट करो और ये जो भी न्यूज दिखाई जा रही है इसे बंद करवाओ, और मैं कुछ घायलों को देख लूं, इसके बाद जब हम सब फुर्सत से बैठ जाएंगे तो इस बारे में बात करेंगे। इसके बाद उसने प्रियांक को अलग किया और उसे कहा, तब तक तुम आराम करो। फिर वो वहां से चला गया। बाकी लोग भी वहां से चले गए। आलिया भी, वो जैन का पता लेने के लिए चली गई थी। प्रियांक के पास आरोही रुकी हुई थी। जल्द ही ऑफिशियल न्यूज दी गई। न्यूज में ये खबर आई और सबको बताया गया, वैसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा दिखाया गया। कैप्टन निक और बाकी के लोग सुरक्षित हैं। उन्होंने लोगों को बचा लिया था। कैप्टन निक ने अपने एक और सक्सेसफुल मिशन को पूरा किया और किसी की भी जान को खतरे में नहीं आने दिया। फिर कहा गया, जो भी लोग संस्थान के अस्पताल में भर्ती हैं, कोई भी उनसे मिलने की कोशिश न करे। संस्थान की सिक्योरिटी टाइट रहती है तो किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाएगा।
कल तक सभी को संस्थान के अस्पताल से सिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो सब उनसे मिल सकते हैं। बाकी अगर किसी को अपने लोगों का हाल जानना है तो वो संस्थान के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। अगर उन लोगों के पास खुद का फोन है तो वे डायरेक्ट भी उनसे बात कर सकते हैं। फिर एक हेल्पलाइन नंबर दिखाई देने लगा जो नीचे लाल रंग की पट्टी में था। लोगों ने ये खबर सुनी तो उनकी जान में जान आई। वहीं कैप्टन निक की तारीफ के कसीदे पढ़े जाने लगे, क्योंकि न जाने ये कितनी दफा था जब कैप्टन निक ने इसी तरह से लोगों की जान बचाई थी और वो न्यूज में सुर्खियों का हिस्सा बना था। वो लोगों के लिए किसी हीरो की तरह था। ये न्यूज देखकर प्रियंका जी की जान में जान आई। उन्होंने तुरंत फोन निकाला और प्रियंक को कॉल किया। प्रियंक के फोन उठाते ही उन्होंने उससे पूछा, हेलो प्रियंक, तू ठीक तो है ना? प्रियंक ने सामने से जवाब दिया, हाँ मम्मा, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। कैप्टन निक ने हम सबकी जान बचाई, वो बहुत ग्रेट है। उन्होंने बिना अपनी जान की फिक्र किए हम सबकी जान बचाई थी। मिस्टर दत्ता और मिस्टर जॉनसन ने भी ये अपडेट हुई खबर देखी तो वे दोनों भी खुश हो गए। मिस्टर दत्ता बोले, मिस्टर जॉनसन, सुना आपने? मेरा बेटा वो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे, और आपका बेटा भी ठीक है। हाँ हाँ, मैंने सुना ये। मेरा दिल कर रहा है जाकर अभी उसे गले लगा लूं, उसे बता दूं मैं उसका डैड हूँ। मैं ऐसा ही करूंगा। ये सुनते ही मिस्टर दत्ता के चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ गई, क्योंकि ऐसा होने का मतलब था उनके लिए मुसीबतों का बढ़ना। नहीं, मुझे नहीं लगता आप ऐसा कुछ कर पाओगे। आपने जो काम किए हैं और आपकी जो सच्चाई है, उसके बाद वो कभी आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। फिर अगर पावती आपकी पत्नी है तो आप अच्छे से जानते हो उसकी जान भी आपकी वजह से गई है। एली के साथ साथ उसकी मौत के जिम्मेदार भी आप हो, वो भी मुझसे ज्यादा। आपके बिजनेस ने जो बुलंदियां छुई है वो इसी वजह से छुई है। मिस्टर जॉनसन का चेहरा गुस्से से भर गया। उन्होंने मिस्टर दत्ता का कॉलर पकड़ा और दीवार की तरफ ले जाकर वहां दीवार से लगाते हुए बोले, बकवास बंद करो तुम, मैं अकेला इस काम के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, तुम भी इसमें साथ थे। हाँ, हम दोनों इसमें साथ थे। इसमें जो फायदा हुआ था वो हम दोनों का हुआ था, और अगर इसके बाद हमारा नुकसान होता है तो वो भी हम दोनों का होगा, और नुकसान कितना ज्यादा होगा ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है।
तो तुम क्या चाहते हो, मैं अपने बेटे को सच्चाई ना बताऊं? इसी में हम दोनों की भलाई है। अगर सच्चाई सामने आई तो हम दोनों ही खतरे में पड़ जाएंगे। मगर मैं ये बात नहीं छिपा सकता। मिस्टर जॉनसन ने अपना हाथ हटाया और दूसरी तरफ घूम गए। बात तो आपको छिपानी ही पड़ेगी, मिस्टर दत्ता ने अपने कॉलर को सही करते हुए कहा। इसके अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। मिस्टर जॉनसन रोने लगे, क्योंकि उनके पास सच में कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रोने के बाद उन्होंने अपने आंसुओं को संभाला और मिस्टर दत्ता की तरफ पलटते हुए बोले, ठीक है, मैं ये बात निक को नहीं बताऊंगा, मगर ध्यान रहे, मेरे बेटे की जान पर अब तुम्हारी वजह से कोई खतरा नहीं आना चाहिए। अगर उसे कोई भी खतरा आया तो मैं इस बात की परवाह नहीं करूंगा। हम दोनों ने मिलकर क्या किया, मैं सारी सच्चाई सबके सामने ला दूंगा। अगर आप मुझे धमकी दे रहे हो तो अपने लिए भी सुन लो, मेरी तरफ से अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। मगर इसके अलावा आपने कोई भी बात बाहर की तो मैं निक को बता दूंगा, एली और पावती की मौत के जिम्मेदार आप थे, मुझसे ज्यादा। कहकर मिस्टर दत्ता मुस्कुराते हुए वहां से चले गए।